نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد کسی کی کسی کے سامنے شکایت کرنا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا یہ بہت عام ہے لوگ مختلف لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتے ہیں بیٹا اپنی ماں کے سامنے شکایت کرے گا اپنے باپ کے سامنے شکایت کرے گا اپنے بڑے بھائی کے سامنے شکایت کرے گا اپنے دوستوں کے سامنے شکایت کرے گا بوڑھے ماں باپ اپنی جوان اولاد کے سامنے شکایت کریں گے شاگرد استاد کے سامنے شکایت کرتا ہے اور یہ جو شکایتیں کی جاتی ہیں ان کی دو کیٹیگری ہیں ایک تو یہ کہ شکایت سچی ہے اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ شکایت جھوٹی ہے تو جھوٹی شکایت کرنا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ جھوٹی شکایت کرنا یہ اس پر تہمت لگانا ہے اور کسی پر تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کو خامخواہ اکیوز کرنا سلینڈر کرنا اس میں جو شکایت کی چیز نہیں ہے اس کو شکایت بنا کر کسی کے سامنے پیش کرنا تو یہ تو جائز نہیں ہے دوسری بات کہ جس بات کی شکایت کی جا رہی ہے وہ سچی شکایت ہے وہ میرے پیسے کھا گیا وہ مجھے گالیاں دیتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے وہ میرے ساتھ بے رخی اختیار کرتا ہے جھوٹے وعدے کرتا رہتا ہے اور حقیقت میں ایسا ہے تو اس کی پھر دو شکلیں ہو جائیں گی دو کیٹیگری پہلی شکل یہ کہ شکایت تو بجا ہے لیکن شکایت کرنے والا جب کسی کے سامنے شکایت کرتا ہے تو اتنی ہی شکایت کرتا ہے جتنی شکایت ہے ایک شکل یہ ہے اور دوسری شکل یہ کہ بڑھا چڑھا کے شکایت کرتا ہے مرچ مسالے ڈال کر مول ہل کو ماؤنٹین بناتا ہے نظر آتا ہے پہاڑ لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو چوہا نکلتا ہے چوہا نظر آتا ہے کہ اوہو اتنی چھوٹی سی بات تھی اور اتنی بڑی بنا دی تو شکایت صحیح ہے بجا ہے وہ میرے ساتھ بے رخی اختیار کرتا ہے اب ہوا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ مگر کہا یہ کہ اتنے سال گزر گئے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے جب بھی ملتا ہے تو بے رخی اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی بہتان کا عنصر ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں وہ باتیں کہی جا رہی ہے جو حقیقت میں نہیں ہے اور بہتان گناہ کبیرہ ہے تیسری شکل یعنی اس کی شکایت صحیح ہے बढ़ा चढ़ा के करता है। इसकी दो कैटेगरी है सही शिकायत की, बढ़ा चढ़ा के करता है, और दूसरी शक्ल यह है कि शिकायत सही है और जितना है उतना ही बयान करता है, जितना है उतना ही बयान करता है। अब मामला ठीक नजर आ रहा है, एक थप्पड़ मारा और शिकायत भी कर रहे हैं कि मुझे इसने एक थप्पड़ मारा। एक तो है ना कि मारा, एक तो है कि मारा ही नहीं और आप कह रहे हैं कि इसने मुझे मारा, ये तो बोहतान है। और एक कि हल्का सा एक थप्पड़ रसीद किया और आप कहते हैं कि बहुत मारा मुझे, इसमें भी बोहतान है। कुछ सच्चाई है मगर इसमें भी ज्यादा आपने मुबालगा किया है, एग्जेजरेशन किया है। और तीसरी शक्ल ये कि थप्पड़ मारा और एक ही मारा और वही कहा कि इसने मुझे एक थप्पड़ मारा, तो शिकायत बिल्कुल बजा है, सच्ची है। और जितनी शिकायत करनी चाहिए थी उतनी ही है। तो अब जो है सबको इत्मीनान हो गया कि इस हद तक तो इजाजत है, नहीं इसमें अब और आगे जरा गहराई से देखना पड़ेगा। वो ये है कि शिकायत करने वाला किस नीयत से शिकायत कर रहा है। इसलिए कि किसी के ऐब को बयान करना गिबत है, तो ये तो ऐब हुआ ना कि वो मारता है लोगों को। तो आप किस नीयत से बयान कर रहे हैं? आपकी नीयत ये है, एक तो ये शक्ल हो सकती है कि आपकी नीयत ये है कि मैं किसी हाकिम के सामने जाकर शिकायत करूं, या अब्बा के सामने जाकर शिकायत कर दूं, अम्मी के सामने जाकर शिकायत कर दूं, बड़े भाई के सामने शिकायत कर दूं, पुलिस के सामने शिकायत कर दूं, ताकि आइंदा मेरे ऊपर ये जुल्म न हो। इसकी बिल्कुल इजाजत है, शरीयत इजाजत देती है। आप जो है किसी के सामने शिकायत करते हैं किसी की कि उसको मैंने 10,000 पाउंड कर्ज दिए थे एक साल के लिए, आज 10 साल हो गए हैं देने का नाम नहीं है, और इस नीयत से आप कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि ये कुछ वहां कर्ज देने की बात कर रहा है, तो कहीं मेरा भाई फंस ना जाए, इसलिए आप कह रहे हैं। तो किसी की बुरी बात करना ये गीबत है, लेकिन हर गीबत नाजायज नहीं है, हर गीबत नाजायज नहीं है। तीन आदमी मशवरा कर रहे हैं कि आज हम फुना के घर में रात को 1 बजे 12 बजे डाका डालने वाले हैं। तीन आदमी मशवरा कर रहे हैं कि आज हम फुना जगह पर छुप कर वहां से फुना गुजरने वाला है उसे कत्ल करने वाले हैं, और आपने सुन लिया। अब आप कहना चाह रहे हैं पुलिस को, आप उस शख्स को फोन करके कहना चाहते हैं कि देखो भाई ख्याल रखना, आज तुम पर कातिलाना हमला होने वाला है फुना जगह पर, वहां से मत गुजरना। आपका दिल कर रहा है कि भाई घर वालों को कहें कि डाका पड़ने वाला है, आपका दिल कर रहा है कि पुलिस को निशानदेही कर दें ऐसे लोगों की ताकि उनको सजा मिले, जेल में बिठा दिए जाएं तो लोग इससे महफूज रहें। एक दिल में ख्याल आ रहा है, मगर आपके जहन में यह ख्याल आ रहा है कि यह तो किसी की बुरी बात है और गीबत करना जायज नहीं है, और गीबत से आप बचने के लिए वो बात करते नहीं। डाका पड़ जाता है, हजारों का नुकसान हो जाता है, जान चली जाती है। आपका किसी के साथ कोई मामला है और मुफ्ती साहिब के सामने पूरा तजिया रखना पड़ेगा आपको कि मेरा और मेरे वालिद साहिब का ये झगड़ा है और मेरे वालिद साहिब मेरे ऊपर ये ज्यादती कर रहे हैं, और आप कहें कि गीबत है इसलिए मैं तो बात कर ही नहीं सकता। तो किसी की ऐसी बुराई बयान करना जो उसमें नहीं है वो तो बुहतान है, वो तो स्लैंडर है, गुनाहे कबीरा। और किसी की ऐसी बुराई करना जो उसके अंदर है वो गीबत है, اور دونوں گناہ کبیرہ دونوں جائز نہیں ہے. لیکن بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے. ایک انسان جو ہے اپنی حفاظت کے لیے غیبت کرتا ہے, پولیس کو جا کر کہتا ہے کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ ایسا کرتا ہے, دیکھو آپ برائی بیان کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم کسی کی شکایت کسی کے سامنے کریں گے تو اگر وہ شکایت جھوٹی ہے تو بہتان کا گناہ, اگر وہ شکایت سچی ہے مگر آپ کچھ ایگزاجریشن کر رہے ہیں تو بھی بہتان کا گناہ, اور شکایت بالکل سچی ہے ایگزاجریشن بھی نہیں کرتے ہیں تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب ٹھیک ہیں. نہیں, دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی غرض کیا ہے, باعث کیا ہے, محرک کیا ہے, مقصد کیا ہے آپ کا اس شکایت سے. اس شکایت سے اگر مقصد یہ ہے کہ میرا حق مجھے مل جائے تو اجازت ہے. اس شکایت سے اگر مقصد یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی کی اصلاح ہو جائے تو اجازت ہے. اس شکایت سے اگر مقصد یہ ہے کہ میں تو ایسا سمجھ رہا ہوں کہ میں حق پر ہوں اور یہ غلطی پر ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو رہی ہو تو پتہ چل جائے, تو جائز ہے. لیکن مقصد صرف یہ ہو کہ جس کے سامنے میں شکایت لے کے جا رہا ہوں اس کی نظروں میں وہ گر جائے, اس کی نظروں میں گر جائے. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے, اس کے 10 پاؤنڈ کی چوری ہو گئی, چھوٹے بھائی نے چوری کر لی. اب وہ ابا کو صرف اس لیے شکایت کر رہا ہے, وہ 10 پاؤنڈ چلے گئے اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے بھائی 10 پاؤنڈ ہی تو ہے, میرے پاس تو ہزاروں بینک میں پڑے ہوئے ہیں. اور بھائی کو چوری کی عادت ہو گئی ہے تو یہ چوری کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے, میں ابا کو کہوں گا تو اصلاح ہوگی, یہ نہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ چھوٹے بھائی ابا کو محبوب بہت ہیں, تو میں یہ 10 پاؤنڈ کی چوری کی شکایت کروں تو یہ ابا کی نظروں سے گر جائے اور میں محبوب ہو جاؤں. دیکھو سچی شکایت ہے پھر بھی نیت بری ہے, اس لیے یہ گناہ کا کام کیا. اس لیے ایک بات تو آج کی مجلس میں یہ ذہن نشین کر لو کہ جب بھی کسی کی شکایت کرنے کی نوبت آئے تو نمبر ایک یہ سوچو کہ میں جو شکایت کرنے جا رہا ہوں, جو میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کی شکایت کرو, موقع مل گیا ہے, سچی شکایت ہے. سچی ہے تو پھر جتنی ہے اتنی ہی بول رہا ہوں یا کچھ ایگزاجریشن کر کے ٹویسٹ کر کے سامنے والے کے سامنے ایسے الفاظ کہ اس کو غلط فہمی ہو جائے, یہ دونوں صورتوں میں بہتان ہوگا. اور یہ جو دوسری صورت ہے کہ جس میں کچھ سچائی بھی ہے اور کچھ جھوٹ بھی ہے, تو وہ سچائی کا حصہ بھی بری نیت سے ہے تبھی تو بہتان لگا رہا ہے, تو غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے. اور تیسری شکل کے جس میں سچائی ہے اور جتنی شکایت ہے اتنی ہی بیان کر رہا ہے مگر نیت اچھی نہیں ہے تو گناہ, اور نیت اگر اچھی ہے تو پھر یہ اچھا کام ہے, اس کی اجازت ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے جو شکایت کی ہوگی تو اس کے پیچھے اچھا مقصد ہوگا. یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ میرا دل دکھا ہے کہ ابو ذر نے مجھے یبن سودا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کالی عورت کے بیٹے, یعنی مجھے کالا کہا, تو دل دکھا ہوگا. تو دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تسلی دیں گے, میرا یہ غم دور ہوگا. یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ میرے دل کو جو ٹھیس پہنچی ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں, ہو سکتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی جانتے ہیں. اور یہ بھی مقصد ہو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کی ضرورت ہے, انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا, غلط کیا, یہ ان کی آخرت کے لیے برا ہے. اس لیے کسی کی ہم شکایت کریں تو بہت سوچ سمجھ کے شکایت کریں. बहुत सोच समझ के शिकायत करें। मदारिस के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, टीचरों के सामने शिकायत जो बच्चे ले जाते हैं उसमें नीयतें बुरी होती हैं। अपने दोस्तों की बड़ी बड़ी शिकायतें होती हैं वो कोई लेकर नहीं जाता, और जिनसे ताल्लुक नहीं है उसकी छोटी सी शिकायत भी जाकर के लगा देते हैं। ये सही नहीं है, ये जायज नहीं है, इस पर पकड़ होगी आखिरत में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा काम कर रहा है जो किसी फर्द के दीन या दुनिया के लिए नुकसानदेह हो, उस शख्स के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इदारे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मदरसे के लिए, कॉलेज के लिए, घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, और आदमी देख रहा है और शिकायत करने पर कादिर भी है और अच्छी नीयत से, सही नीयत से शिकायत कर भी सकता है, लेकिन वो चुप रहता है और बतलाता नहीं है, इसलिए कि बुजदिल है, यही कि मैं क्यों पढ़ूं इस झगड़े में, इसका भी मुआखजा होगा, इसलिए कि वो किसी पर जुल्म होता हुआ देख रहा है फिर भी खामोश है। और कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा नुकसान हो जाता है और पूछा जाता है कि भाई कोई है जिसने ये देखा है, ये काम किसने किया, तो कोई गवाह भी नहीं उठता, ये कितमाने शहादत है। देखो छोटी छोटी बातें हैं मगर कितनी अहम है। इसलिए शिकायत की नौबत आए तो झूठी शिकायत नहीं करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सच और झूठ मिला करके भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। नंबर तीन, गलत नीयत से शिकायत नहीं करनी चाहिए, शिकायत सच्ची मगर गलत नीयत। और नंबर चार, सच्ची शिकायत है और नीयत भी दुरुस्त है मगर मकाम ऐसा है कि अगर सब्र कर जाए तो बेहतर है, वहां सब्र कर जाना चाहिए। और सच्ची शिकायत उतनी ही बोल रहा है जितनी बोलनी चाहिए, और जगह ऐसी है कि ये शिकायत अगर मैं नहीं करूंगा तो किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वहां शिकायत करनी चाहिए। अल्लाह ताला शानू हमें तौफीक अता फरमाए। अब आगे, ये तो शिकायत करने वाले की बात, जिसके सामने शिकायत की जा रही है उसको भी गौर फिक्र करना चाहिए कि ये शिकायत जो आई है तो शिकायत करने वाला किस मकसद से शिकायत कर रहा है। तो बाज लोगों की आदत होती है कि ऐसे ही शिकायत करते रहते हैं, चुगलखोरी मकसूद होता है कि मैं इनको कुछ कहूं, उनको कुछ कहूं, इन दोनों की आपस में एक दूसरे से बदगुमानी हो जाए, छोटों को बड़ों की नजरों से गिराने के लिए शिकायतें की जाती है। तो शिकायत सुनने वाले को भी कच्चे कान का नहीं होना चाहिए कि जो सुना वो मान लिया, जो सुना वो मान लिया, यानी जिसने भी आकर किसी के बारे में शिकायत कर दी बस वो कानों से दिल में उतर गई, दिमाग में रच बस गई, और अब फैसला भी हो गया कि वो गलत है जिसके बारे में शिकायत की गई है। तो शिकायत करने वाले को पहले तो पहचानो, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि शिकायत करने वाला इतना एतिबार वाला नहीं है, पहले तो ये देखो कि जिस चीज की शिकायत की जा रही है उस शिकायत की तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए या नहीं। फुला आदमी यूं है, फुला आदमी यूं है, फुला आदमी आपके बारे में ये बात कह रहा है, आपका मुखालिफ है, तो आपने देख लिया कि भाई अगर वो मुखालिफ है तो भी फर्क नहीं पड़ता, मुखालिफ नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। उसने अगर ये कहा कि मैं अच्छा हूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छा नहीं हूं तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आया हुआ है शिकायत लेकर, उसकी शिकायत की आदत को खत्म करना चाहिए। और उसके लिए मैंने क्या अर्ज किया कि उससे कहो कि भाई जरा दो मिनट ठहर जाओ, हम उनको जरा बुला लेते हैं, तो पता चल जाएगा आपको। हजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया होगा, इसलिए कि मैं उसे जानता हूं। अब दूसरी मर्तबा कौन जाएगा शिकायत देकर। और गालिबन हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अली के पास आकर जब कोई कहता था कि फला आदमी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, तो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अली फरमाते थे कि तुमसे तो अच्छा है, उसकी जुबान पर जो मेरी बुराई आई वो बुराई उसने मेरी पुश्त के पीछे की, तो मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंची। तुमने मुझे आकर के कहा तो मेरे दिल को ठेस पहुंचाई, वो तुमसे अच्छा है। और वैसे भी बुरी बात हत्तल इम्कान सुननी नहीं चाहिए, और अगर सुन ली तो आगे पहुंचानी नहीं चाहिए, दूसरों के सामने करनी नहीं चाहिए। बुरी बात सोशल मीडिया के ऊपर पढ़नी नहीं चाहिए, एक पैराग्राफ पढ़ा पता चल गया कि ये पढ़ने जैसी नहीं है, वहीं खत्म कर दो, और अगर पढ़ लिया आपने तो आगे मत भेजो। इसलिए कि अगर वो गुनाह का काम उसने किया है तो आप आगे भेज करके आप भी गुनाह के काम में शरीक हो रहे हैं। और हजरत जी मौलाना यूसुफ साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अच्छी बातें करो, उससे अच्छा ही फैलती है, और बुरी बातें मत करो, इसलिए कि बुरी बातें करने से बुराई फैलती है। तो शिकायत कोई लेकर के आए तो उसको ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने के बाद ऐसा लगे, ये तो इसके लिए फिरासत चाहिए कि खामोखा ऐसे ही लड़ाने वाला आदमी है तो उसे काट दो, और अगर लगे कि नहीं इसने जो शिकायत की है बहुत माकूल शिकायत है, और अगर ऐसी बात है जो ये कह रहा है तो नुकसान हो सकता है, तो मैंने जो इसके लिए इलाज बतलाया है वो करें कि भाई ठहरो, उनको जरा बुला लेते हैं। किसी की शिकायत सुनकर दिल में कभी भी किसी के बारे में मनफी फैसला उसे पूछे बगैर नहीं करना चाहिए। जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकायत लेकर आए, हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत सच्ची थी, उन्होंने उतनी ही बयान की जितनी शिकायत थी, और नंबर तीन अच्छी नीयत से बयान की। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो भी बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलील कद्र सहाबी जिन्हें तवील सोहबत हासिल हुई थी, उनके बारे में यही हुस्न ज़न रखा जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये यकीन पैदा भी हो गया होगा कि बिलाल सच बोल रहा है, इसलिए कि लंबा तजुर्बा था, ये कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसूल पर अमल किया गया, अबू जर से पूछा कि अय्यरतहु बिउम्मिही, अय्यरतहु बिउम्मिही, ये उसूल है। क्या तुमने बिलाल को उसकी मां का जिक्र करके आर दिलाई कि तेरी मां काली है? पूछा पहले। मैं थोड़ा जो है यहां से एक तरफ दूसरी तरफ थोड़ा जाना चाहता हूं, तफसील से नहीं सिर्फ इशारा। इस वक्त अमेरिका के एक शहरी के कत्ल के बाद एक जबरदस्त मूवमेंट उठा है, एक जबरदस्त तहरीक उठी है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु इस तहरीक को कामयाब करे, और उसके नतीजे में जितने मजलूम हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला शानुहु अदलो इंसाफ के और अमन और सुकून के और राहत के फैसले फरमाए। सियाह रंग के जो लोग हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये तो इस्लाम भी कहता है कि गोरा हो या काला हो, अरब हो या अजम हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, औरत हो या मर्द हो, छोटा हो या बड़ा हो, गुलाम हो या आजाद हो, हरेक की जान की कीमत एक जैसी है। अल्लाह की नजर में हरेक की जान कीमती है, इसे कि जब किसी को मारा जाता है तो रूह निकलती है, रूह जाहिर होती है, रूह जाती है, तो बदन के फर्क से वो जान के फर्क में कोई तफावत नहीं है। इसीलिए अगर छोटे बच्चे को भी कोई कत्ल कर दे, एक शख्स छोटे बच्चे को कत्ल करता है और दूसरा बड़े मर्द को कत्ल करता है, दोनों की सजा एक है। एक शख्स बीमार को कत्ल करता है और दूसरा तंदुरुस्त को कत्ल करता है, दोनों की सजा एक है इस्लाम में। एक शख्स अपाहिज को कत्ल करता है और दूसरा सही सालिम शख्स को कत्ल, दोनों की सजा एक है। एक शख्स औरत को कत्ल करता है, दूसरा मर्द को कत्ल करता है, दोनों की सजा एक है। तो ये आप देखिए कि बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हो इस्लाम की आमद के यूं समझो के 15-17 साल के बाद, कुछ ज्यादा भी हो सकता है कुछ कम भी हो सकता है, 15-17 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो कि अरब थे, अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हो अरब थे और बनू गिफार एक बहुत बाअजमत कबीला था, तो बाअजमत कबीले के एक बाअजमत फर्द की शिकायत अरब के नहीं दोनों जहान के सरदार के पास लेके जा सकते हैं। झिझक महसूस नहीं हुई कि मैं तो काला हूं, मैं हबशी हूं, मैं गुलाम था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरी कोई फैमिली लीनियज जैसी मजबूत नहीं, और अबू जर की शिकायत लेकर के मैं जाऊंगा तो ब्रश असाइड करेंगे ना। दुनिया में इंसानी हुकूक का चर्चा है सबसे ज्यादा यूरोप में, और इस वक्त यूरोप जो है वो सही या गलत हुकूक इंसानी का आलम बरदार समझा जाता है, हुकूक इंसानी का चैंपियन समझा जाता है। मैंने गलत या सही इसलिए कहा कि मैं सारे केसेस को देखने के लिए नहीं जाता, इसलिए मैं नावाकिफ हूं। हो सकता है कि हकीकी माने में आलम बरदार हो और हो सकता है कि हकीकी माने में आलम बरदार ना हो। इसी वजह से इन मुल्कों में से किसी मुल्क को ऐसा नजर आ रहा है कि फुना मुल्क में किसी पर जुल्म हो रहा है तो हमला भी करते हैं, कभी हुकूक इंसानी के खिलाफ वहां ये काम हो रहा है, फुला जो सदर है या फुला प्राइम मिनिस्टर है वो डिक्टेटर है, इस वजह से उसे हटाना बहुत जरूरी है, हुकूक इंसानी के खिलाफ है। देखो कितना बड़ा कारनामा है कि जहां उनको नजर आ रहा है कि जुल्म हो रहा है तो फौरन चले जाते हैं। तो जो हुकूक इंसानी के अलम बरदार है जिनमें पेश पेश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका है, वहां के अवाम सड़कों पे आ गए हैं और इस हालत में आ गए हैं कि जब उनको बार बार कहा जा रहा है कि तुम्हारा सड़कों पे इस तरह रोजाना निकलना ये तुम्हारी जान के लिए खतरनाक है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसके जवाब में वो लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना रेसिज्म खतरनाक है, हमें कोरोना वायरस का उतना खतरा नहीं है जितना यह कौमियत और तासुब का खतरा है। वो अपनी जानों को खतरे में डालकर बाहर निकल रहे हैं और ये मार्चेस जो है ज्यादा उन मुल्कों में हो रहे हैं जिन मुल्कों को पूरी दुनिया हुकूक इंसानी की अलम बरदार समझ रही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो अपने आप को मजलूम समझता है वो इन्हीं के दरवाजे खटखटाता है, अमेरिका का दरवाजा खटखटाता है, बर्तानिया का दरवाजा खटखटाता है, यूनाइटेड नेशन में जाके। तो कम से कम हजारों ये ऐलान कर रहे हैं कि यहां हुकूक इंसानी को पामाल किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हुक्मरान हैं मजमूई हैसियत से ओवरऑल हुक्मरान में से भी मजमूई हैसियत से ये मना नहीं कर रहे हैं, ये मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं इनका मार्च करना गलत है और सही नहीं है, और सब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बंद दरवाजे के पीछे ऐसा हो रहा है, सब कबूल कर रहे हैं और सब बड़े बड़े लोग ये बात कह रहे हैं, जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं वो लोग कह रहे हैं कि हाँ इसके बारे में कुछ होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि ऐसा कहां हो रहा है, ये खामोखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं बहुत ही अहम बात कहना चाह रहा हूं और वो बात ये है कि पूरी दुनिया में हुकूक इंसानी का कोई भी अलमबरदार हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बर्तानिया हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इजिप्ट हो, कोई भी हो, हुकूक इंसानियत की हिफाजत कानून से डर कर बचकर तो की जाती है, कानून से डर कर तो की जाती है, लेकिन कानून से बचकर जहां हुकूक इंसानी को पामाल किया जा सकता हो कोई दरेग नहीं करता। और वजह उसकी यह है कि दिलों के अंदर काले और गोरे का फर्क जो है वो मिट नहीं रहा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में सिर्फ कानून नहीं बनाया था कि गोरे और काले के हुकूक में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने दिल का ऐसा तज़किया किया और ऐसे मुसलमानों के दिल मुजक्का हो गए कि दिल के अंदर फर्क बाकी न रहा गोरे और काले के दरमियान। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और इयाज, महमूद तो गुलाम था और इयाज तो गुलाम था और महमूद सुल्तान, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और इयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। रंग के फर्क को मिटा दिया, काला गोरा कोई फर्क नहीं, मेरिट्स की बुनियाद पर देखा जाएगा। काले के अंदर अगर काले के अंदर मेरिट्स ज्यादा है, खूबियां ज्यादा है, अच्छाइयां ज्यादा है तो वो गोरे से ज्यादा अफजल, और गोरे के अंदर अगर मेरिट्स ज्यादा है तो वो काले से अफजल। अरब और अजम के फर्क को मिटा दिया, खुतबा हज्जतुल वदा में ऐलान किया, ला फजल लि अरबीन अला अजमीन वला लि अजमीन अला अरबीन। अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, पायटी और गॉड फियरिंग की वजह से फजीलत हासिल होती है। क्यों? इससे कि पायटी और गॉड फियरिंग, जिसे हम तकवा कहते हैं अरबी में, उसकी वजह से इंसान में मेरिट्स आती है, वर्चूज आते हैं, वर्चूज की बुनियाद पर फैसला होगा। ऐलान कर दिया कि कयामत के दिन वर्चूज और अच्छाइयां और खूबियां नहीं होंगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। अरब है अरब, और अरबी भी हाशिमी है, अरबी भी कुरैशी और कुरैशी भी हाशिमी सैयद, लेकिन वर्चूज नहीं है, तकवा नहीं है, पायटी नहीं है, गॉड फियरिंग नहीं है, और एक काला शख्स है या एक गरीब शख्स है, एक अपाहज है, बदसूरत है, अनपढ़ है, लेकिन वर्चूज है, पायटी है, गॉड फियरिंग है, अखलाक, वो आगे चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा और वो अरब पीछे रह जाएगा। मुंबत्ता बिही अमलू लम युसरे बिही नसबहू, जिस शख्स के अमल ने, जिसके अमल ने यानी वर्चूज ने और खूबियों ने और अखलाक ने और मेरिट्स ने पीछे कर दिया तो उसका नसब उसे आगे नहीं ले जा सकेगा। या फातिमा तो ये फातिमा सलीनी मिम्माली माशेते, माल में से जो मांगना हो मांग लो, दुनिया में तो मैं इधर उधर से ला करके भी तुमको दे दूंगा, लेकिन आखिरत में अनकदी नफ्स की मिनन नार, खुद को जहन्नम से बचाओ, फ इन्नी ला उगनी अन की मिनल्लाही शैया, इसलिए कि अल्लाह के दरबार में मैं कुछ काम नहीं आ सकूंगा, तुम्हें मदद नहीं कर सकूंगा अगर वर्चुज नहीं है तो। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स चार्टर भी है और ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स का वॉच डॉग भी है और वो बोलते भी हैं, रिपोर्ट भी छापते हैं, फुना जगह यूं जुल्म हो रहा है, फुना जगह यूं 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 हो रहा है, कौन मानता है? इसलिए कि जब तक दिल दिमाग में फर्क रहेगा, दिल दिमाग में ये बात रहेगी कि मैं सुपीरियर और ये इंफीरियर, उस वक्त तक ये मजालिम होते रहेंगे। जहां देखा कि कानून का डंडा सर के ऊपर है तो ठीक हो जाएंगे, और जहां देखा कि सर का कानून का डंडा सर पर नहीं है तो फिर वही बात। इसीलिए आप देखें किसी जगह के ऊपर कौमियत की बुनियाद पर, किसी जगह पर नस्ल की बुनियाद पर, किसी जगह पर कलर की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, किसी जगह पर मजहब की बुनियाद पर कितने कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए कि जहां कानून कमजोर है या कानून में कुछ भी मौका मिल जाता है जुल्म करने का तो उनको पीसा जाता है, मजलूमों को। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों से और दिमाग से इस फर्क को मिटाया था, इस ग्रुप बंदी को मिटाया था, इस कौमियत के बुत को निकाला था। और मिसालें मिलती है इसकी। फातिमा बिन्त मखज़ूम ने चोरी की, अब बनू मखज़ूम का खानदान भी ऊंचा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि फातिमा बिन्त मखज़ूम बनू मखज़ूम की औरत, यानी ऊंचे खानदान की औरत, तो एक ऊंची औरत, उसने चोरी कर ली और चोरी की सजा इस्लाम में जो है वो नाफिज करो। तो लोगों के दिलों में ख्याल आया कि अच्छा नहीं होगा, ऊंचे खानदान की है, शरीफ है, शरीफ ऊंचे खानदान की है, और वधी घटिया खानदान, तो कुछ करना चाहिए कि कोई दूसरी शक्ल निकल आवे, कुछ फाइन कर दो, कोई दूसरी सजा दे दो। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर के अर्ज कौन करे? तो कि उसामा बहुत महबूब है। सुनो गौर से, यह है इक्वालिटी इस्लाम में। अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, अली मौजूद है रजी अल्लाह अन्हु, अब्बास मौजूद है रजी अल्लाह अन्हु, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। का उसामा को भेजो। उसामा कौन है? गुलाम का बेटा। उसामा कौन? गुलाम का बेटा। उसामा कौन? उम्मे ऐमन का बेटा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया का बेटा। उसामा को भेजो। गुलाम के बेटे को क्यों भेजे? कहा इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता और महबूब है, हिब्बु रसूलिल्लाह है ये, इसलिए उसकी बात को रद्द नहीं करेंगे, ये बोल सकेगा जाकर। देखो ये है इक्वालिटी, ये है बराबरी, कि बड़े बड़े शोराफा एक गुलाम के बेटे के लिए कह रहे हैं कि इस सिफारिश के लिए उसामा को भेजना चाहिए, और उसामा तो अभी नौजवान लड़के हैं। अब उसामा जाते हैं और उसामा जाकर के सिफारिश करते हैं, मगर ये मकाम ऐसा था कि सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता, अल्लाह का हक उसे तो पूरा करना चाहिए, उसे तो पूरा करना जरूरी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए, अल्लाह का हक था। का तशफाउ फी हद मिन हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में तो सिफारिश करने के लिए आया उसामा। और फिर फरमाया कि तुमसे पहले लोगों का यही हाल था कि अगर कोई शरीफ गलती करता था तो छोड़ देते थे, और बेचारा कोई गरीब गलती करता था तो उसे पकड़ लेते थे। اور یہ فرمایا کہ میں شریف اور وضیع کے درمیان فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اور اس فرق کو میں ایسا مٹا چکا ہوں کہ یہ تو فاطمہ بنت مخزوم ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدھا, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کے ساتھ میں وہی معاملہ کرتا جو فاطمہ بنت مخزوم کے ساتھ کر رہا ہوں, کوئی فرق نہیں. انصاری کا کیس آیا, جب بھی کسی بھی معاملے میں انصاری کا کیس آیا, مہاجر کا کیس آیا, مہاجر میں بھی قریشی کا کیس آیا, قریشی کے اندر بھی ہاشمی کا کیس آیا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, خلفائے راشدین کے دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کے ساتھ کوئی ایکسپشنل معاملہ نہیں کیا گیا, اور پوری مملکت میں کسی کو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے رنگ کی وجہ سے, میری نسل کی وجہ سے, میرے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, میری مالی پوزیشن کی وجہ سے, میری وجاہت یا حیثیت کی وجہ سے میرے ساتھ فرق کیا جا رہا ہے. نہ, اللہ تعالی شانہ ہمیں اس دین کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ دین جو ہے, یہ دین صرف حقوق کو بیان نہیں کرتا, حقوق کو پامال کرنے کے جو ذرائع اور وسائل ہیں یعنی دل میں تفریق کا ہونا اسے ختم کر دیتا ہے, کہ دل دماغ سے اس تفریقے کو نکال دو تاکہ تمہاری آنکھیں جس کسی پہ پڑے تو تمہیں ایسا نظر آئے گی یہ میرا بھائی ہے, اگر مسلمان ہے تو یہ میرا مسلمان بھائی ہے, اور اگر غیر مسلم ہے تو یہ میرا انسانی بھائی ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں غالباً مصر میں, اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے نے ہارس ریسنگ کی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو غریب گھرانے کا تھا, اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی عربی قریشی, اور وہ جو غریب گھرانے کا آدمی تھا وہ اپنی مہارت سے جیت گیا. جیت گیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو غصہ آیا, اور غصہ آیا اور اس نے اس کی پٹائی شروع کر دی, دو چار چابک لگا دیے, چابک لگا دیے, وہ کچھ کر نہیں سکا. اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا کہ اس کا باپ تو گورنر ہے, اس لیے وہ وہاں سے سفر کر کے سیدھا مدینہ منورہ آیا. اور آ کر کے کہا کہ احاد مقام العائد یا امیر المؤمنین, جو شخص بھی آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ملاقات کر لیتا تھا, کوئی دربن اور بن نہیں ہوتا تھا. ابو بکر کو سیدھا جا کر مل لیتا تھا, عمر کو سیدھا جا کر مل لیتا تھا رضی اللہ عنہ. پناہ لینے والے کی جگہ ہے یہ, تو کہ کیا ہوا تمہیں, تو پورا قصہ سنایا. فوراً فرمان جاری کیا کہ عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے کو فوراً حاضر کرو مدینہ منورہ. یہ نہیں کہ بھائی تم ان نون آدمی, چھوٹا موٹا آدمی, بھائی اس کی کچھ مہمان نوازی کرو, کچھ 5-25 ہزار درہم اسے دے دو, خوش کر لو, معاف کرا دو. نہ, بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ گورنر کے بیٹے کی غلطی ہوئی تھی, اگر اس میں چشم پوشی کر لی جائے گی تو فساد کے دروازے کھل جائیں گے, اسے پوری مملکت کو معلوم ہونا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری تحقیق کی, اور تحقیق کے نتیجے میں جب اطمینان ہو گیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چابک اس غیر معروف عام آدمی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بدلا لو. बदला लो। और अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला और उनके बेटे की तरफ देख करके एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, जो इस वक्त अमेरिका में जो तहरीक चल रही है उस पर भी पूरा फिट होता है और कयामत तक फिट होता रहेगा। तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, ये हुकूक इंसानी की तंजीमें तो बहुत बाद की पैदावार है, ये मैं आपको 1300-1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपने ये रिशद फरमाया कि मतस्ताबतुम उन्नास वकद वलदत हम उम्महातुहुम अहरारा, इंसानों को उनकी माओ ने आजाद जना है, फ्रीडम के साथ जना है और तुमने उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया, तुमने उन्हें अपना गुलाम समझ लिया कि उनके साथ जो मामला जो चाहो मामला करो। मैं क्या हो रहा है दुनिया में उसको गहराई से पॉइंट बाय पॉइंट देखते नहीं, बहुत दूर है हमसे, लेकिन कितना जोर लगता है। पहले एक को गिरफ्तार किया, एक को गिरफ्तार करके उसको चार्ज किया, तीन को तो छोड़ दिया, चार पुलिस में से एक को चार्ज किया, तीन को छोड़ दिया, फिर चारों को चार्ज किया और पहले को जिस दर्जे का चार्ज किया था उसके ऊपर की डिग्री का चार्ज उस पर किया, थर्ड डिग्री से सेकंड डिग्री या सेकंड डिग्री से थर्ड डिग्री। तो पहले चारों को पकड़कर तीन को छोड़ दिया और एक को कैद में ले लिया। अब अगर चारों मुजरिम थे तो पहले उन तीनों को छोड़ा क्यों? और लोगों के तकाजे और लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन और लोगों के एहतजाज और लोगों के दबाव डालने की वजह से अगर उन तीन गैर मुजरिमों को आपने पकड़ लिया है तो उनके हुकूक पामल हो रहे हैं। तो एहतजाज से पहले तीन को छोड़ दिया तो जो इंतकाल कर चुका है उसका हक पामल किया आपने, यानी पेट का पानी नहीं हिलता हमारा कि एक शख्स मर गया है और तीन आदमियों को आप छोड़ रहे हैं जो कि आपकी नजर में अब मुजरिम थे, पहले आप कैद उनको गिरफ्तार करके ये बता रहे हैं कि वो मुजरिम थे लेकिन छोड़ दिया था आपने, और अगर आपने प्रेशर में आकर के उन तीनों को पकड़ लिया है तो उन तीनों के हुकूक का क्या? जिस तरह सियाह फार्म का हक होता है इसी तरह सफेद फार्म का भी हक होता है। तो दो में से एक तो बात है, या तो उस पर ज्यादती हुई या इस पर ज्यादती हुई। और शुरू में आपने चार्ज लगाया था कम दर्जे का, फिर चार्ज लगाया हाई डिग्री का प्रेशर में आकर, तो अगर पहले से ही फैसला था तो अब ये मुजरिम के ऊपर जुल्म हो रहा है, हाई डिग्री का आपने चार्ज लगाया, और अगर इस वक्त सही आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इतना कुछ हो गया, एक शख्स की जान चली गई उसके बावजूद भी आप जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कहां है लोगों की इंसानी, कहां है हुकूक के इंसानी हुकूक के खातिर कितने कितने बम गिराए जाते हैं और लाखों इंसानों को कत्ल किया जाता है और कहा यह जाता है कि हुकूक इंसानी के तहफ्फुज़ के खातिर हमने ये किया है, इस डिक्टेटर को हमने इसलिए हटाया है कि ये लोगों पे जुल्म कर रहा था। और ये कलेटरल डैमेज है, ये साइड पर जो होता है वो तो होता ही है, एक जो मकसद हासिल करने के लिए लाखों कत्ल हो गए मगर मकसद तो हासिल हो गया ना, बहुत अच्छा होना चाहिए ऐसा, जालिमों को खत्म करना चाहिए। लेकिन एक मुल्क में कानून अलग, दूसरे मुल्क में कानून अलग। इसीलिए इस्लाम जो है इस इस्तिलाह का कायल नहीं है कि लोग को रूल को आप तोड़ नहीं सकते, बैंड कर सकते हैं। इस्लाम में रूल को न तोड़ सकते हैं न बैंड कर सकते हैं। इस्लाम में रूल रूल होता है, हक हक होता है। तो यही होता है कि जिसके पास पावरफुल लॉयर है वो या तो रिश्वत का मामला करके छूट जाते हैं, मालदार लोग, बावजाहत लोग अपने पोजीशन की वजह से, माल की वजह से, कोई वजाहत की वजह से छूट जाता है, कोई माल की वजह से छूट जाता है, और वकील जो है वो केस को लड़ता है और लड़ करके सच को गलत और गलत को सच करके बचा लेता है जालिम को, और मजलूम बेचारा पिसता ही चला जाता है। ये बीच में जुमला ही मोतरिजा के तौर पर मैं थोड़ा हटा। इंसान जितने भी हैं, खुतबे हज्जतुल वदा में भी आपने फरमाया कि अल्लाह ताला शानहू ने बनु आदम को मिट्टी से बनाया है, इन सब के बाप आदम है और सबकी मां हव्वा है, सब बराबर है, सब बराबर। फैसले होंगे वर्चूज, वर्चूज की बुनियाद पर और ईवल्स की बुनियाद पर। ईवल्स अगर है तो बुरा, वर्चूज है तो अच्छा, और जितने वर्चूज उतना मर्तबा ऊंचा और जितने ईवल्स उसका उतना मर्तबा नीचा। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई छोटी छोटी मोटी गड़बड़ कर दी तो वो बुरा हो गया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लिबरेटर बनकर, फातेह बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं, तो उस वक्त आपकी ऊंटनी के ऊपर आपके साथ कौन सवार थे? उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, एक गुलाम के बेटे, गुलाम के बेटे। और जब इस्लामी तारीख में बैतुल्लाह में सबसे पहली मर्तबा अजान देने का वक्त आया, तो ये अजान जो है आजकल हमारी नजरों में बहुत हकीर हो गई है, और चूंकि हमारी नजरों में हकीर हो गई है तो हकीर शख्स को खड़ा कर देते हैं, जिसको अजान का तलफ्फुज भी नहीं आता, जिसकी दाढ़ी भी शरी नहीं है, जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी करता है। और इंडिया वगैरह मुल्कों के अंदर, अफ्रीका वगैरह के मुल्कों के अंदर बिल्कुल गरीब शख्स को, बिल्कुल गरीब शख्स को, गरीब शख्स को मुअज्जिन बनाया जाता है। तो चूंकि बिल्कुल गरीब शख्स को मुअज्जिन बनाया जाता है, तो अजान देने से लोग आर महसूस करते हैं, हालांकि अजान कहने वाला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में, इस्लाम की नजर में बहुत ऊंचा शख्स है, बहुत ऊंचा शख्स। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान कहता है तो उसे बुलंद आवाज से कहना चाहिए, इससे कि जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक अल्लाह की मखलूक में जितनी चीजों से वो अजान की आवाज गुजरती है वो सब कियामत के दिन उसके लिए मोमिन होने की गवाही देगी। अल मुअज्जिनून यौम अल कियामत अतवलुहुम अनाका, कियामत के दिन मुअज्जिन बहुत ऊंचे मर्तबे वाले होंगे, बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर बैठे हुए होंगे, ऊंचे मर्तबे वाले ऊंची जगहों पर बैठे हुए होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी जिंदगी का एक दौर ऐसा गुजारा है कि जिसमें उनको मुअज्जिन मुकर्रर किया गया था, मुअज्जिन थे वो। बुखारी शरीफ में है ये कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुअज्जिन थे, और इकामत जो है वो बिल्कुल मस्जिद के, मस्जिद के दरवाजे के करीब से इकामत कहते थे, और वहां से जब आगे जाते थे तो इमाम अल्लाहु अकबर कहने से पहले इमाम से कहते थे कि ला तफूतनी भी आमीन, भाई देखो जरा सूरह फातिहा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना मैं आ रहा हूं, मेरी आमीन ना छूट जावे, ऐसा ना हो कि मैं सफ में दाखिल हो जाऊं, बड़ी मस्जिद होगी। मुअज्जिन थे। तो चूंकि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला सियाह फाम थे, और जिस दौर में हम रहते हैं सियाह फाम के साथ बहुत मजलूमियत का बर्ताव किया जा रहा जाता है, और उनको नीची निगाह से देखते हैं, उससे लोग मुतासिर हुए। तो कहते हैं बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले थे, गरीब फकीर अमीर, गरीब फकीर गिरे पड़े आदमी थे, इसलिए उनको अजान के लिए कह दिया होगा। मैंने तो इंडिया में भी जहां जहां कह सका कहा, और अफ्रीका में भी जहां जहां कह सका कहा। मैंने कहा कि आप एक शख्स को नौकर रखते हो और उसका टाइटल है मुअज्जिन, और उसकी जिम्मेदारी क्या है? मस्जिद खोलने की, मस्जिद को साफ करने की, बैतुल खला को साफ करने की और अजान कहने की। मैंने कहा हमारे यहां इंग्लैंड में हर कोई अजान कह देता है, हमारे यहां कोई मौजिन नहीं होता। तो इसको खादिम मस्जिद का टाइटल दो कि ये खादिम है मस्जिद का, और इससे सारे काम करवाओ और अजान इससे भी कभी कभी दिलवाओ कि ये भी अगर देना चाहे तो, कि ये भी अजर सवाब से महरूम न रहे, मगर शोरफा भी अजान कहे, उलमा भी अजान कहे। हमने जब मस्जिद नूर की जिम्मेदारी संभाली तो सबसे पहली बात जो हमने कही वो ये कि फासिक फाजिर खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी करने वाला अजान नहीं कह सकता, और दाढ़ी रखना वाजिब है, लिहाजा जो जिसकी शरी दाढ़ी न हो उसे अजान नहीं कहनी चाहिए। तो मैंने मुअज्जिनीन को जमा किया, वो तो उम्र में मुझसे बड़े थे और मैं चूंकि लेस्टर ही में बड़ा हुआ तो वो मेरे लिए मामा और काका की चचा की हैसियत रखते थे, लेकिन मैंने बहुत अदब से कहा कि चूंकि अब मैं इस मस्जिद का जिम्मेदार हूं इसलिए अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, तो आप सब हजरत खुशी से अजान दीजिए मगर अपनी दाढ़ियों को पहले शरी बना लीजिए, उस वक्त तक अजान कोई और कहेगा। तो उनमें से जिन्होंने शरी दाढ़ी बना ली उनसे अजान कहलवाई और साथ में उलमा को भी लगा दिया। हमारे भाई मौलाना इस्माइल साहिब, उनको मैंने कहा कि आप भी अजान कहिए और भी दूसरे उलमा, और अभी भी मस्जिद नूर में उलमा अजान कहते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अजान क्या तो बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला मुअज्जिन थे, वही मुअज्जिन होंगे ना भाई, यूं हमारे जहन में आते ना। अजान का काम जिस तरह इमामत के लिए बहुत सोच समझ के किसी को खड़ा किया जाता है तो अजान के लिए भी बहुत सोच समझ कर खड़ा किया जाता था। तो हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला का इंतखाब जो हुआ, एक तो इफ्तिताह है मस्जिद समझो, हरम शरीफ की इफ्तिताह हो रही है एक फतरत के बाद, आज उसे पाक किया गया है और सबसे पहली मर्तबा, तो हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि मैं, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम तो अजान की हकीकत को समझते थे और अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद करना मक्का मुकर्रमा में फतह करने के बाद सबसे पहली मर्तबा, कितना बड़ा शर्फ। ये शर्फ किसको मिला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर के अजान कहो, काबे की छत पे खड़े होकर अजान कहो। काबे की छत पे एक काला शख्स खड़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली दुनिया को बताया कि काला आदमी भी पायटी तकवा गॉड फियरिंग मेरिट्स अच्छी अच्छी खसलतें अपने अंदर ले आता है ईमान पर और आमाले सालिहा पर मेहनत करके, तो वो भी इस दर्जे पर पहुंच जाता है कि सारे अरब नीचे से ऊपर देख रहे हैं और काबे की छत पे हबशे का काला बिलाल अजान कह रहा है। तो काबे की छत पे बिलाल है और जब मेराज के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो फरमाते हैं कि बिलाल मैंने तुम्हारी चलने की आहट जन्नत में अपने आगे आगे सुनी, तुम तो मेरे आगे आगे चल रहे थे, यानी जन्नत में तुम मेरे खादी में खास रहोगे, मेरे आगे आगे चल रहे थे, क्या अमल है तुम्हारा? तो बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात दिन में जब भी गुस्ल या वुजू करता हूं तो अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालू जितनी तौफीक देते हैं उतनी रकातें पढ़ लेता हूं। यहीं से वो तहियतुल वुजू साबित है कि तहारत हासिल करने के बाद तहियतुल वुजू कम से कम दो रकात पढ़नी चाहिए। ये मजमून मुस्तकिल एक अलग मजमून है, एक अलग मजमून है, ये मैं बीच में अर्ज कर दिया कि यहां पर देखो कितनी जुरात, कितनी इक्वालिटी, कितनी इक्वालिटी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये में इक्वालिटी, काले और सफेद में इक्वालिटी, मर्द और औरत में इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या माना होता है? किसी को झिझक महसूस नहीं होती हक बात बोलने में, और उसे पता होता है कि मैं अगर हक बात बोलूंगा तो मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, मुझे कोई तिरछी आंख से भी नहीं देखेगा और मेरी सुनवाई होगी और मेरी बात पर लब्बैक कहा जाएगा। حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کل لوگوں کی عورتوں کی مہریں بہت بڑھ گئی ہے مہر مہر بہت بڑھ گئی ہے بھائی مہر بڑھ گئی مثلا ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ 200 pounds 300 pounds مہر فاطمی ہوتی ہے تو 600 pounds تقریباً یہ مہریں ہوتی ہے اب کل سمجھو کہ 5,000 to 10,000 مہریں شروع ہو جاوے تو بیان کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ مہریں بہت بڑھ گئی ہیں لہذا مہر کو کم کرنا چاہیے تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور ایک عورت نے کہا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تو ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارن تو قنطار جو ہے اور حال یہ ہے کہ تم نے ان میں سے ایک کو تمہاری بیوی کو مہر کا ڈھیر دیا ہے مہر کا ڈھیر دیا ہے تو قرآن سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ مہر کا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے اور آپ منع کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہوں خطبہ دے رہے ہیں آپ اور ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ٹھہر جاؤ ابھی اس وقت آپ خطبہ نہ دی پہلے ایک وضاحت کیجیے کیا وضاحت کروں تو کہ ابھی جو مال آیا تھا اس مال کو تقسیم کیا تو سب کو ایک ایک چادر ملی ہے عمدہ چادر ایک ایک ملی سب کو اور آپ نے دو پہنی ہیں اوپر بھی وہی چادر ہے نیچے لنگی کی جگہ پر بھی وہی چادر ہے تو معلوم ہوا کہ سب کو ایک ایک ملی ہے آپ کو دو ملی ہے یہ بے انصافی ہے عام آدمی پوچھ رہا ہے اور مسجد میں سب کے سامنے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خاموش ہو جا بیٹھ جا شرم نہیں آتی تجھے نہیں کہا کہ یہ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو یہ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ جواب دو ان کو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک چادر ابو کو ملی تھی ایک چادر مجھے ملی تھی میں نے میری چادر ابو کو ہدیے میں دے دی ہے تو ابو نے جو سوٹ بنایا ہے وہ میری چادر کے ذریعے بنایا ہے تو اس پر وہ حق بولنے والا شرمندہ نہیں ہوا اس نے کہا کہ اب آپ خطبہ دیجئے اب ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور غالباً جب انہوں نے خلافت کی مسند کو سنبھالا اور سب سے پہلا خطبہ دیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگو اگر میں راہ راست سے ہٹتا ہوا تم کو نظر آؤں تو تم کیا کرو گے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار سونت لی اور اس نے کہا یہ عمر اگر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹتا ہوا ہم نے تمہیں دیکھا تو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی تو ڈانٹا نہیں کہ میرا ادب نہیں کیا میرا احترام نہیں کیا میں تمہارا بڑا حضرت ہوں نہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے یہ کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری رعیت میں ایسے افراد رکھے ہیں کہ عمر اگر صراط مستقیم سے ہٹے گا تو وہ اسے صراط مستقیم پر لا کر کے رکھ دیں گے اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ میری رعیت میں موجود ہیں بس دل تو کرتا ہے کہ اس مضمون پر اور میں گفتگو کروں لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کالے بھی تھے گورے بھی تھے براؤن کمپلیکشن والے بھی تھے غریب بھی تھے امیر بھی تھے مگر کسی کو ایسا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں چھوٹا ہوں میں بڑا ہوں نہ وہاں میرٹ کو دیکھا جاتا تھا میرٹ کو دیکھا جاتا اور میرٹ دنیاوی میرٹ نہیں دنیاوی وجاہت نہیں کہ میں مال ہے تو میرٹ پرائم منسٹر ہے تو میرٹ نہیں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا دین دیکھا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے بیٹھے ہوئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو نظر اٹھا کر کے دیکھا جب کوئی آتا ہے تو وائبز ملتے ہیں کہ کوئی آیا ہے تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے تو آپ اپنے کام میں پھر لگ گئے तो अबू सुफियान जहां थे वहीं बैठ गए। अबू सुफियान कौन? कुरैशी, उमवी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर, फादर इन लो। कोई तवज्जो नहीं किया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, क्यों? इसलिए कि मेरिट जो थी उसके एतबार से वो ठीक थे, जहां थे वो ठीक, वो भी फजीलत वाले थे। मगर थोड़ी देर के बाद फिर ऐसी वाइब्स महसूस हुई कि कोई आया, जब नजर उठा के देखा तो बिलाल पे नजर पड़ी, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला, सहाबा की भी नजर पड़ी, जगह बन गई, जगह बीच में सब हट गए, और हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने भी जरा आगे पीछे हरकत करके उनके लिए आगे जगह की और आगे बिठाया उनको। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इतने जलीलुल कद्र शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतराम से देखते थे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और तमाम सहाबा बड़े एहतराम से देखते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अंबिया के बाद सबसे अफजल, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के बाद सबसे अफजल उमर रजी अल्लाह अन्हु, किसी को इसमें शुबा नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वफाते उमर पर, शहादत उमर पर ये इरशाद फरमाया रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मुझे पता ही था कि तुम्हें शहादत मिलेगी और तुम ईमान के साथ कामयाबी के साथ दुनिया से जाओगे और तुम्हें वही दफन होना नसीब होगा जहां वो दोनों सोए हुए हैं, दोनों हजरात। और कहा उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जिंदा थे तो मैं हमेशा उनको सुना करता था कि जहब तो अना व अबू बकर व उमर, रई तो अना व अबू बकर व उमर, कुछ भी होता था तो मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, तो दुनिया में भी साथ साथ रहते थे तो वहां भी साथ। इतने बड़े आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहुद पर गए, साथ कौन था? अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम, और जबल उहुद हिलने लगा। अब क्यों हिला वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन एक आशिकाना और विजदानी जो वजह समझ में आती है वो ये कि उहद पहाड़ भी खुशी में झूम उठा कि आज मेरा ये नसीबा कि मेरे ऊपर सैयदुल मुरसलीन भी खड़े हैं और साथ में अबू बकर भी और उमर भी और उस्मान भी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मुत या उहद, उस्कुन या उहद, ये उहद थम जा, तू ठहर जा, क्यों हिलता है? फइन्ना अलीका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है और दो शहीद खड़े हैं, दो शहीद खड़े हैं। इतने बड़े आदमी, लौकान बादी नबी लकान उमर, अगर नबुवत का दरवाजा खुला होता मेरी बात तो हजरत उमर होते। इतने बड़े आदमी, लेकिन मैंने कहा कि दिल दिमाग से सियाह और सफेद, गरीब और अमीर, अरब और अजम का फर्क अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटा दिया था, लिहाजा काले रंग के आदमी पर भी नजर पड़ती थी तो मेरिट्स नजर आती थी, उसका काला रंग नजर नहीं आता था। इसीलिए क्या फरमाते थे? अबू बकर सैयदोना, अबू बकर बिलाल सैयदोना, आतकहु सैयदोना, कि बिलाल हमारे सरदार हैं, बिलाल हमारे सरदार हैं, बिलाल हमारे सरदार हैं और उनको आजाद करने वाला भी हमारा सरदार है। यानी दोनों को सरदार कहा, दोनों को हजरत कहा, बिलाल भी हमारे हजरत है और उनको आजाद करने वाले भी हमारे हजरत हैं, अबू बकर भी। अल्लाह ताला शानहु हम सबको तौफीक अता फरमावे, तौफीक अता फरमावे, तौफीक अता फरमावे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु सीधे चले गए दरबार रिसालत में और शिकायत कर दी हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की, और हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु की शिकायत सही थी, जो था वही कहा और अच्छी नीयत से कहा, अच्छी नीयत से कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शिकायत सुनकर फौरन फैसला नहीं किया, बल्कि पूछा कि आयर तह भी उम्मी तहकीक। हमेशा मेरे भाइयों ये याद रखो, खासतौर पे जो लोग ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं उन्हें अपने दाएं बाएं आगे पीछे जो खुदनाम हैं, जो बहुत करीब के लोग हैं, उनकी किसी के बारे में मन
منفی باتیں سن کر فوراً فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. اسی طرح ان سے تعلق والوں کے بارے میں اچھی باتیں سن کر فوراً کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا وقت لینا چاہیے, اچھے طریقے سے ذرا جستجو کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ بڑے ہیں, آپ ادارے کے بڑے ہیں, آپ تحریک کے بڑے ہیں, آپ کی ایک غلطی سے پوری تحریک بیٹھ سکتی ہے, آپ کی ایک غلطی سے پورا ادارہ غلط رخ پہ جا سکتا ہے. اور جو بڑے لوگ ہیں, اونچے منصب پر ہیں, انہیں اس طرح رہنا چاہیے کہ ہر شخص آ کر کے کان میں بات کر سکے, ہر شخص ملاقات کر سکے, ہر شخص کی سنوائی ہو سکے. اس سلسلے میں جو ہے دو باتیں عرض کر کے آج کی بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ہردوئی, ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا سلیمان گھانچی صاحب رحمہ اللہ تعالی, ساؤتھ افریقہ لینز کا جو مدرسہ ہے دار العلوم زکریہ, حضرت مولانا شبیر سالوجی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بانی ہیں, حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہیں, اور ان دونوں حضرات سے ہماری بڑی محبت کا تعلق رہا ہے. اللہ مولانا شبیر صاحب کی عمر میں برکت دے, بیماریوں کو دور فرمائے, اور مولانا سلیمان گھانچی صاحب کے درجے بلند فرمائے. میری ان سے جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ مزدلفہ میں ہوئی تھی, اور میری عمر جو ہے 21-22 سال کی تھی, اور میں میرے والدین کے ساتھ حج کے لیے گیا ہوا تھا, اور اس وقت مزدلفہ کے اندر فیسلٹیز بہت کم, عرفات میں بھی بہت کم, مینا میں بھی بہت کم. تو مزدلفہ میں آسمان کی چھت کے نیچے پڑاؤ ڈالا, اور یہی جولائی اگست کے مہینوں میں اس وقت حج آتا تھا, تو گرمی بھی تھی, تو میں نے دیکھا کہ ذرا پریشان ہے, اور ہمارے ساتھ قافلے میں عمر والے لوگ تھے, حضرت قاری گیوالا صاحب بھی تھے, حضرت مولانا غلام گیوالا صاحب تھے, ہمارے والد صاحب تھے, عورتیں تھیں. تو میں نے والدین سے کہا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھو, میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ پانی وانی کہیں مل جائے. تو والدین نے فکر کے ساتھ کہا کہ ادھر ادھر بہت دور مت چلے جانا, کہیں گم نہ ہو جائے. تو میں گیا تو ہر شخص جو ہے دو چادروں میں ہوتا تھا. اب مولانا سلیمان صاحب جو ہیں, ہر شخص ادھر ادھر کوئی کیا لے کے جا رہا ہے, کیا لے کے آ رہا ہے, وہ سامنے سے آ رہے تھے, نہ وہ مجھے پہچانے نہ میں ان کو پہچانا. لیکن والدین کی دعا کی برکت کہ وہ برف کی سیل, برف کا پورا بلاک تھا اس زمانے میں, برف کے بلاک کے اندر ایسے پانی اور ڈرنکس, کوک اور فینٹا وغیرہ رکھتے تھے, مرنڈا وغیرہ, تو وہ اس کے اندر پھر ٹھنڈا رہتا تھا. وہ پورا ایسا سیل اٹھا کر کے لا رہے ہیں, اور اس میں تقریباً 1 ڈزن جو ہے الگ الگ چیزوں کی بوٹلز ہیں. تو میں نے ان پر میری نظر پڑی تھی, میں نے کہا یہ صاحب وہ چیز لا رہے ہیں جو مجھے چاہیے, تو ان کو میں پوچھتا ہوں. اب عربی ہے, انگریزی ہے, کیا ہے وہ تو پتا نہیں چلتا, تو میں ان کی طرف جا رہا ہوں, وہ میری طرف آ رہے ہیں, یعنی درجنوں لوگ آ جا رہے ہیں, لیکن ان دور ہی سے انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب یو وانٹ, مولوی صاحب یو وانٹ, زور سے انہوں نے مجھے پکار کر کہا. میری تو اس وقت ڈاڑی بھی اتنی نہیں تھی, مولوی صاحب یو وانٹ, تو چل رہے تھے, اور میں بھی, میں نے کہا کہ یس آئی وانٹ, ویئر ڈیڈ یو گیٹ اٹ فرام, تو کہ ٹیک دس. تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے پلیز شو می دا پلیس آن ہائی وے, تو کہنا یو ٹیک اٹ, مجھے دے دیا اور وہ واپس چلے گئے. وہاں سے تو بہت لوگ جا رہے تھے, لیکن والدین کی دعا کی برکت میں لے آیا, سب نے الحمدللہ پورے قافلے نے اس میں سے پیا, 8-10 آدمی جو ہم تھے. بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی, ایسا شریف التبع آدمی, اور میں نے پوچھا نہیں کہ آپ کس ملک سے ہے, آپ کا نام کیا ہے, کیا نہیں ہے, تو مجھے وہ چیز ایسی اندر پریشان کرتی رہی کہ میں نے غلطی کی, مجھے ایسا شریف آدمی. اس زمانے میں ہمارے حلقے کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اکابر وغیرہ سب باب العمرہ کی طرف, وہاں حتیم کے پیچھے عشاء کے بعد جمع ہونے کا معمول تھا, یعنی وہ میٹنگ پوائنٹ جیسا تھا, بڑے بڑے اکابر بھی وہیں ہوتے تھے اور باہر نکل کر المکتبۃ الامدادیہ ہوتا تھا وہاں بھی جمع ہوتے تھے تو میں بھی وہاں چلا جایا کرتا تھا تو حج سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے دن جب میں وہاں پہنچا تو مولانا شبیر سالو جی صاحب سے تھوڑا تعارف اسی حج میں پہلے ہو چکا تھا تو ان سے میں نے ملاقات کی تو وہ ظریف الطبع تھے مولانا سلیمان صاحب تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب بھی وہاں ہے اور ہمارے جیسے کپڑے پہنے ہوئے میں نے کہا یہ تو اپنے ہی ہے اور سر کے اوپر وہ تھانوی ٹوپی یہ ہمارا پہلا تعارف ہے ان کے ساتھ پھر ماشاء اللہ محبتیں رہی اور اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مجھے یہ خود قصہ سنایا تھا انہوں نے یا ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہ ہم لوگ جب طالب علمی کے زمانے میں ہردوئی میں پڑھتے تھے تو ایک دن بورڈنگ میں رات کو کچھ ہم شرارت کر رہے تھے تو شرارت کا معنی کوئی بڑی شرارت نہیں ایسے ذرا کھیلنا کودنا گیارہ بجے سونا ہے تو 11:30 ہو گئے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت پہنچی تو دوسرے دن حضرت نے ایسے غور کیا کہ بورڈنگ کے جس ایریا میں یہ ہو رہا تھا وہاں ایسے کھیلنے کودنے والے کون کون لوگ ہیں تو کہ حضرت نے اندازہ لگا کر کے ہمیں بلایا دفتر میں اور دفتر میں بلا کر کے حضرت نے اصلاحی باتیں شروع فرما دی اب یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں مسلح ہوتے ہیں شیوخ اسی طرح مدرسے کے مدرسین ہوتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دوسری کی بات بھی سنو اور فائنڈ آؤٹ کرو اچھی طرح وغیرہ ایسا اپلائی اس میں نہیں ہوتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ سامنے والوں کو بھی کوئی یہ نہیں ہوتا اب یہ مولانا جو ہے بہت شریف آدمی مگر ظریف الطبع ذرا بولنے والے ہمت کے ساتھ تو جب حضرت نے ان کی اصلاح شروع فرما دی ڈانٹ ڈپٹ یعنی تو گلٹی ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت رات کو کسی نے شرارت کی اور کسی کو پتا نہیں کہ شرارت کرنے والے کون ہیں اور بغیر دلیل کے آپ نے ہمیں مجرم قرار دے دیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا یہ کون بول سکتا ہے وہ بول سکتا ہے جسے پتا ہو کہ سامنے والا آدمی شریعت مطہرہ کا پابند ہے تو کہا فوراً حضرت نے معافی مانگنا شروع کر دی کہ بات صحیح ہے تمہاری مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی اور ایسا ہی ایک واقعہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے بھائی نیاز تھے غالباً نام ان کا بھائی نیاز تو ان کے بارے میں کوئی شکایت پہنچی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو وہ بھی ذرا ہنسی مذاق کرنے والے آدمی تھے تو ہنسی مذاق کرنے والا آدمی ہر ایک کے ساتھ ہنسی مذاق کچھ کر لیا کرتا ہے جو سینسٹیو آدمی ہوتا ہے وہ شکایت لے کے آ جاتا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شکایت کی تو حضرت تو جانتے ہی تھے کہ ان کی طبیعت ایسی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ جہاں فارمیلٹیز نہیں ہوتی وہاں یہ سب ضروری نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری پھر شکایت آئی ہے تو کہ حضرت گواہی کے بغیر آپ ایسے ہی نہیں مجھے موقع نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے پوچھے بغیر ہی آپ نے میری پکڑ شروع فرما دی تو حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیجیے یعنی تانے کے طور پر نہیں ایک تو ہوتا نا طنز کے طور پر کہ ہاں بھائی معاف کر دیجیے بس آپ بہت بڑے ہیں الحمدللہ بڑے ہو گئے ایسا نہیں تو آج کی نشست میں الحمدللہ بہت باتیں آ گئی شکایت کرنے کا طریقہ جو شکایت جس سے کے ساتھ کی جائے اس کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور بیچ میں یہ اس وقت کا جو ہاٹ ٹاپک ہے اس پہ بھی بات آ گئی اور اسلام جو ہے وہ صرف ایک ایشو پر بات نہیں کرتا کہ گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے ابھی تو موومنٹ یہ ہے نا کہ بلیک لائفز میٹر اسلام یہ کہتا ہے کہ ایوری ہیومنز لائف میٹر پاکستانی ہے تو بھی امپورٹنٹ ہے اس کی لائف اور اس کے رائٹس لائف اور رائٹس اور اگر وہ افریقن ہے تو بھی اور اگر وہ ساؤتھ امریکن ہے تو بھی اور نارتھ امریکن ہے تو بھی کینیڈین ہے تو بھی باربیڈین ہے تو بھی اور وہ مڈل ایسٹ کا رہنے والا عرب ہے تو بھی چائنیز ہے تو بھی جاپانیز ہے تو بھی सबके हुकूक है अपने अपने। और इस्लाम में तो यहां तक है कि प्रिजनर ऑफ वॉर जो दुश्मन होते हैं उनके भी बहुत आला दर्जे के हुकूक हैं, बहुत आला दर्जे के हुकूक हैं। उस पर मैं सूरह मोहम्मद की तफसीर में गालिबन या जुमा की किसी मजलिस में अर्ज कर चुका हूं गुज़िश्ता साल, इस वक्त जो है वो मौका नहीं है। और इस्लाम में सियाह फाम लोग अताई इब्ने अबी रबाह रदी अल्लाह तआला जैसे बड़े बड़े मुफ्ती आजम बने हैं, पैदा हुए हैं कि मुफ्ती आजम मुफ्ती आजम मुफ्ती आजम। और आज भी जो है अरब और अजम इमाम बुखारी के कायल हैं, इमाम मुस्लिम के कायल हैं, इमाम अबू दाऊद के कायल हैं, इमाम तिर्मिजी इमाम इब्ने माजा इनको अइम्मा मानते हैं कि ये इमाम है हमारे चोटी के, इमाम अबू हनीफा। तो ये हजरत जो हैं वो अरब नहीं थे, वो अजमी थे। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ये देखो इमाम मानते हैं, वो कुरैशी थे मगर गरीब घराने के थे। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु हम सबको तौफीक अता फरमावे, तौफीक अता फरमावे, तौफीक अता फरमावे। इमाम शाफी और इमाम मोहम्मद, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बस पढ़ने के लिए गए तो इमाम शाफी मक्की थे कुरैशी थे और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अजमी थे। तो जब ये पढ़ने के लिए गए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इल्म हासिल किया था तो बड़े बड़े दफ्तरों में पूरा कुतुबखाना साथ ही लेकर के घूमते रहते थे। और हमारी तरह नहीं कि भाई ये बेटा आप मेरी बुखारी शरीफ आपको हदीये में मैंने दे दी और मैं दूसरी खरीद लूंगा, ऐसा नहीं। वो जो उसकी दूसरी कॉपी नहीं होती थी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि हजरत ये मैंने जो इल्म हासिल किया है मुख्तलिफ मशाइख के पास जाकर वो मैं आरियतन आपको दे रहा हूं, बोरो कर रहा हूं, आप इससे भी इस्तिफादा करना चाहते हैं तो हदीसें हैं फिका है जो कुछ भी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त कसम पुरसी के आलम में गरीब तालिब इल्म। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने वो ले लिए इस्तिफादा करने की गरज से और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे मौके पर या उसी मौके पर अपने जितने उलूम के दफातिर थे वो सारे इकट्ठे करके उनको कहा कि तुमने मुझे तुम्हारे दफातिर आरियतन दिए हैं, मैं तुमको हदीयतन दे रहा हूं। यानी यूं समझो कि ऐसी किताब दे रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वो बड़े छोटे में कोई फर्क नहीं करते थे, वो मेरिट्स की बुनियाद पर देखते थे। और इससे एक दूसरी बात भी मालूम हुई कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इल्मी दुनिया में ऐसा दर्क नसीब किया था और हाफिजा इतना कवि था कि वो उन किताबों से मुस्तगनी हो चुके थे। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु इन इस्लामी तालीमात को समझने की हम मुसलमानों को भी तौफीक दे और इन तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अगर हमने ये कर लिया तो इस किस्म की वबाएं रुकेगी, इस किस्म की वबाएं रुकेगी, इस किस्म की वबाएं रुकेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब खैबर जो है खैबर खैबर को फतह कर लिया और खैबर के जो बाशिंदे थे यहूद उस वक्त के उन्होंने ये कहा कि आप जो है खैबर तो आपने फतह कर लिया, अब आप हमें यही रहने दीजिए जहां हम पहले रहते थे और ये जो खैबर के बागात हैं और खेतियां हैं उनमें हम काम करेंगे और उसकी जो पैदावार होगी वो हम शेयर आउट कर लेंगे। तो बहुत अच्छी राय थी उनकी जो पसंद आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, 50-50 हो सकता है, 50-50 हुआ होगा। अब जो है साल के अखीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को भेजते थे कि जाकर के जितनी पैदावार है उसका आधा आधा करके ले आओ। तो जितनी पैदावार होती थी खजूरें अलग अलग किस्म की, खेती अलग अलग किस्म की, तो उनके दो हिस्से किए जाते थे, दो हिस्से। और दो हिस्से किए जाते थे उसके बाद वो जो आमिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जाता था वो उनको कहता था कि इन दो में से आपको जो पसंद आए वो आप पहले ले लीजिए, आप ले लीजिए। तो यहूद क्या कहते थे इस अमल को देखकर, वो ये कहते थे कि ऐसे लोगों ही की वजह से आसमान और जमीन कायम है। दीन पर चलने वाले लोग अगर आज भी पैदा हो जाएं, तो मेरे भाइयों ये आफात बलाया सब टल जाए। इसलिए तौबा करने की जरूरत है, रुजू इल्लाह की जरूरत है और अपने आप को संभालने की जरूरत है। और अगर दीन पर है तो दीन पर होने की हालत में आफत आई तो भी क्या फर्क पड़ जाता है, शहादत की मौत नसीब होती है। बीमार पड़ भी गए तो क्या हर्ज है, अल्लाह सब्र की तौफीक देते हैं और रफे दराजात का जरिया बनाते हैं, खैरात बरकात का जरिया बनाते हैं। الله تعالى شأنه وهم يملك التوفيق دي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.